नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड कार्यक्रम में एक बार फिर आज सवेरे कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you daily news magazine program aaj savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 27th of December. So let's begin with the headlines first. What we need is a dialogue among civilizations, and we need multiculturalism, respect for diversity, tolerance, respect for diverse faiths. That was a quote by Dr. Manmohan Singh. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh passed away in New Delhi last night. He was 92. Dr. Singh breathed his last at All India Institute of Medical Sciences, Delhi. He was admitted to the emergency ward of AIIMS around 8 p.m. in a critical condition. The former Prime Minister had a sudden loss of consciousness at home last evening. An AIIMS bulletin said, despite all efforts, he could not be revived and was declared dead at 9:51 p.m. Dr. Singh had been in poor health for the last few months. He is survived by wife Gursharan Kaur and three daughters. Dr. Singh, who was finance minister under the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao, is considered the architect of economic reforms in 1991 that ushered in an era of economic liberalisation. Dr. Manmohan Singh served as the 13th Prime Minister of India for two terms in the Congress-led UPA government from 2004 to 2014. He retired from the Rajya Sabha in April this year after serving for 33 years. He was born on 26th of September 1932 in a village in the Punjab province of the undivided India.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने शोक संदेश में कहा कि डॉ मनमोहन सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताया जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक भारत की आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। उन्होंने संसद में डॉ सिंह के व्यावहारिक हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके व्यापक प्रयासों की भी प्रशंसा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शोक संदेश में कहा कि डॉ मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉ सिंह के नेतृत्व ने पार्टी लाइन से हटकर प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया और उनकी विरासत राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयास में पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ सिंह के नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, एक बेदाग छवि वाले ईमानदार नेता और अद्वितीय अर्थशास्त्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉ सिंह का अपार योगदान भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉ सिंह ने अपार बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि डॉ सिंह की विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में डॉ सिंह के निधन को भारत की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि डॉ सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली।
अ सेवन डे नेशनल मॉर्निंग इज डिक्लेयर्ड इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉ मनमोहन सिंह। सोर्सेज हैव कन्फर्म्ड दैट ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स शेड्यूल्ड फॉर टुडे विल बी कैंसल्ड। Dr. Manmohan Singh's last rites will be conducted with full state honours. A meeting of the Union Cabinet is scheduled to be held at 11 a.m. today.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड बीबीएसएसएल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने बीबीएसएसएल के लिए वर्ष 2025-26 तक 20,000 अतिरिक्त सहकारी समितियों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने और किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समिति को भारत के इस पारंपरिक बीजों के संग्रह और संरक्षण का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बैठक में श्री शाह ने कहा कि बीबीएसएसएल को ऐसे बीज उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता हो। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि छोटे किसान अधिकतम संभव उपज प्राप्त करें और उनकी फसलों की परिपक्वता अवधि बढ़ाई जाए। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
The election commission yesterday said that 2024 Lok Sabha election saw 64.64 crore voters votes being polled and the number of female voters outshined male participation with 65.78%. The data was mentioned in a comprehensive set of 42 statistical reports released by the poll body. The Lok Sabha 2024 report said that there was an increase of 23.5% in registered third gender electors this year. The commission in a statement said that this Sumoto initiative is to enhance public trust, which constitutes the underpinning of India's electoral system.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन में अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीकी रणनीतिक साझेदारी तथा हालिया क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर 24 दिसंबर से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री इस दौरान अमरीका के विदेश मंत्री से मुलाकात कर द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अमरीका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे।
The Reserve Bank of India, RBI, has revealed that the profitability of banks has increased for the 6th consecutive year in 2023-24 and continues to rise in the first half of the financial year 2024-25. According to the report on trends and progress of banking in India, 2023-24, released by the RBI yesterday, banks reported a return on assets of 1.4% and a return on equity of 14.6%. The report also highlighted that the asset quality of banks has continued to improve, with the gross non-performing assets ratio falling to its lowest in 13 years, 2.7% at the end of March this year and 2.5% at the end of September this year.
भारतीय तटरक्षक बल ने डूबे जहाज एमएसवी ताज धारे हरम से भारतीय चालक दल के 9 सदस्यों को बचा लिया है। ये जहाज पाकिस्तान के खोज और बचाव क्षेत्र में गुजरात के पोरबंदर से लगभग 311 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। गुजरात के मुंद्रा से रवाना हुआ ये जहाज अमन की ओर जा रहा था और समुद्र में भयंकर लहरों और तूफान के बीच फंस गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि खोज और बचाव मिशन मुंबई और पाकिस्तान के कराची के समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों के बीच असाधारण सहयोग को दर्शाता है।
इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यस्टरडे इन्फॉर्म्ड दैट द वेव्स ओटीटी ऐप हैज क्रॉस्ड ओवर 1 मिलियन डाउनलोड्स इन अ मंथ। इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया मिस्टर वैष्णव सेड दिस माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज अनब्रेकेबल बॉन्ड विद इट्स कल्चरल रूट्स। He highlighted that India's OTT platform by Prasad Bharati brings a wave of nostalgia with epic shows like Ramayana and Mahabharat while also embracing the new age content.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले अनीता आप बताएं चेन्नई की क्या खबरें आपके पास।
आईआईटी मद्रास आरबीजी लैब्स आईआईटीएम हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू एनहांस द रोड सेफ्टी थ्रू एविडेंस ड्रिवन इंटरवेंशंस अंडर एन एमओयू साइंड ऑन 23rd ऑफ दिसंबर इन भुवनेश्वर। इट वॉज लेड बाय स्टील एंड माइंस कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विभूति भूषण चन्ना। दिस कोलैबोरेशन लेवरेजेस आरबीजी लैब्स 5E मोड engineering, education, enforcement, emergency care, and empathy to tackle road safety challenges. Key initiatives include scientific crash investigations, capacity building programs for officers, and innovative IEC campaigns for public awareness. Special workshops will train students and teachers as master trainers to foster road safety culture statewide.
और अब मुंबई की खबरों की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में एक समारोह में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों में महाराष्ट्र के अमरावती जिले की करीना थापा भी शामिल हैं। इस बालिका ने अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए एक रिहायशी फ्लैट में लगी आग को बुझाया और एलपीजी सिलेंडर फटने से बचाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के दो वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में गुरुद्वारा का दौरा किया और प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि ये वो दिन था जब गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों साहेबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहेबजादा बाबा फतेह सिंह ने शहादत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि भारत गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुशासन के माध्यम से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मार्ग मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए जीवन की सुगमता को एक महत्वपूर्ण कारक बताया। मुंबई में कल महाराष्ट्र जिला सुशासन सूचकांक 2024 शीर्षक से रिपोर्ट का अनावरण करने के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि सुशासन इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिकों को बिना देरी के गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवाएं मिलती हैं या नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में वन, कृषि और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री फडणवीस ने विभाग से लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने और 100 दिन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने को कहा। मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नए साल की पूर्व संध्या पर 4 विशेष उपनगरीय सेवाएं चलाएगा, जबकि पश्चिमी रेलवे 8 विशेष उपनगरीय सेवाएं चलाएगा और बृहन मुंबई महानगर पालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग वायु प्रदूषण को कम करने और धूल को कम करने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। मिस्टिंग मशीनों और पानी के टैंकरों का उपयोग करके कल लगभग 263 किलोमीटर सड़कों की सफाई और धुलाई की गई। नगर निकाय ने बकायेदारों से 97,000 रूपये से अधिक का जुर्माना भी वसूला। और रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि बैंकों की लाभप्रदता 2023-24 में लगातार छठे वर्ष बढ़ी है और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाई में भी इसमें वृद्धि जारी रहेगी। रिजर्व बैंक की कल जारी भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बैंकों ने संपत्ति पर रिटर्न यानी आरओए 1.4 अर्जित किया है।
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah laid wreaths at the mortal remains of Indian Army soldiers who lost their lives in Kashmir in an accident recently. The remains of the martyred soldiers Subedar Dayanand Tirukannavar and Sipahi Mahesh Marigond were decorated with tricolour and bestowed with final military honours. The Chief Minister laid the wreath and gave his respects to the departed soldiers at the Army War Memorial in Belagavi yesterday. Speaking to media, Chief Minister Siddaramaiah said that a soldier's life and profession are role models for others. He expressed his condolences over the loss of life and wished for souls to rest in peace. He also wished that the families of the martyred soldiers would garner enough strength to withstand the loss of their family members. He informed that the state government will extend support to the families of the departed soldiers according to the norms. The same military honours were extended to Dayanand Subhash from Chikkodi, Mahesh Nagappa of Bagalkot and Anup Pujari of Kuntapur who lost their lives in the same accident.
और अब कलकत्ता की खबरें जान लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी नादिया सीमा से एक अफ्रीकी जंगली बिल्ली को बचा लिया है। दो तस्कर अवैध रूप से इस बक्से के साथ बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोक लिया। बिल्ली बक्से के अंदर बंद थी। दोनों व्यक्ति भागने में सफल रहे। अफ्रीकी जंगली बिल्ली को कृष्णगढ़ बीट के वन विभाग के अधिकारी को सौंप दिया गया है।
The 8th Telangana State Sailing Championships organized by the Telangana Sailing Association and hosted by the Yacht Club of Hyderabad at Hussain Nagar began yesterday. This year, the sailing championships registered a record of 131 entries from 15 districts competing across 6 categories. Telangana's sailing legacy continues to thrive, having produced over 16 national champions and securing approximately 275 medals in the past decade. This year, the event also welcomes 6 sailors from Haryana competing in the Open Championships. Hyderabad's Govardhan Pallara and Rizwan Muhammad led the boys' category, while sisters Lahiri and Dikshita Komaravelli aim for gold in the sub-junior category.
और बात करते हैं दिल्ली की खबरों की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में छापा मारकर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से उच्च गुणवत्ता की 3.5 किलोग्राम चरस जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़ रूपये आंकी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति एमएसीपी योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। सेवानिवृत्त बीएसएफ कर्मियों ने एक याचिका में अपनी पेंशन तय करने के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय लाभ मंजूर करने संबंधी अभिवेदन अस्वीकार करने को चुनौती दी थी। राजधानी के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आज से 2 दिन का राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव शुरू होगा। महोत्सव का उद्घाटन प्रख्यात लेखक, कवि और पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अशोक चक्रधर करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल संवाद एट राजनिवास श्रृंखला के अंतर्गत दिल्ली भर के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल दिल्ली पुलिस के 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें दिल्ली के 3 पुलिस उपायुक्त और 4 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं। और अब खेल जगत की ताजा तरीन जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी हमारी सहयोगी फरत नाज। फरत, आप बताएं आज खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रही हैं?
जी हाँ मुकेश, आज खेल खबरों की शुरुआत हॉकी से। हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच एसजी पाइपर्स और गुनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का उद्घाटन समारोह कल होगा। आकाशवाणी से उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल कल शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर प्रतिदिन 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। वहीं विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता का पहला खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में गुरप्रीत सिंह को 28-25 से पराजित कर पहला राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। वहीं 22 वर्षीय विजयवीर पेरिस ओलंपिक में 9वें स्थान पर रहे थे। शिवम शुक्ला ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पश्चिम बंगाल ने ओडिशा को 3-1 से हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 78वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बंगाल की टीम ने 52वीं बार प्रतियोगिता के अंतिम 4 में जगह बनाई है। रिकॉर्ड 31 बार के चैंपियन पश्चिम बंगाल के लिए नरोहारी श्रेष्ठ रॉबी हसंदा और मनोटोस माझी ने गोल किए। उड़ीसा के लिए एकमात्र गोल राकेश ओरम ने किया। वहीं न्यूयॉर्क में विश्व रैपिड और बिल्ड शतरंज टूर्नामेंट में आज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एरिगेसी 2024 से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में अमेरिका के फेबियानो कारुआना से पीछे हैं। पिछली बार 2019 में कोनेरू हम्पी ने यह खिताब जीता था। वहीं 2017 में विश्वनाथन आनंद ने खिताब जीता था। मुकेश, खेल खबरों में आज बस इतना ही।
धन्यवाद फरत। और अनीता, आप बताएं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो मैच चल रहा है, आज दूसरा दिन है, क्या ताजा जानकारी आपके पास?
ऑस्ट्रेलिया रिज्यूम देयर फर्स्ट इनिंग्स ऑन डे 2 ऑफ द 4th टेस्ट मैच ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया एट मेलबर्न। द हॉर्स वर 455/9 व्हेन द रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। स्टीव स्मिथ स्कोर्ड अ सेंचुरी फॉर द ऑजीज। द इंडियन टीम इज वेयरिंग ब्लैक आर्म बैंड्स इन Melbourne, Mukesh, to honour the former Prime Minister Manmohan Singh, who died in New Delhi last night. Earlier, India had reduced the cost to 311/6 at stumps on day one. Sam Constars sparked the home team's charge with a scintillating 60 runs, marking a dream debut. Usman Khawaja and Manas Labushane and Steve Smith have contributed with 50s for the hosts. Both the teams have won one match each in the 5-match series.
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और अनीता आनंद के साथ। आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले अनीता, दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई और इससे प्रदूषण के स्तर में जरूर कमी आई है और इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये तो बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। अनीता, आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहने वाला है मौसम?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग एंड मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 18 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज. द टेम्परेचर विल हैव अ बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 19 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 27 डिग्रीज सेल्सियस.
और अब आज सवेरे कार्यक्रम में समय हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई. आज 27 दिसंबर है.
इन द ईयर 1831 ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन सेट आउट फ्रॉम इंग्लैंड ऑन अ 5-year सर्वेइंग एक्सपीडिशन ऑफ द सदर्न अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस विजिटिंग सच डाइवर्स प्लेसेस एज द गैलापागोस आइलैंड्स एंड न्यूजीलैंड. डार्विन एक्वायर्ड एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ द फ्लोरा फौना एंड जियोलॉजी ऑफ मेनी लैंड्स. दिस इन्फॉर्मेशन प्रूव्ड इनवैल्यूएबल इन द डिवेलपमेंट ऑफ हिज थियोरी ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट पुट फोर्थ इन हिज ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक वर्क ऑफ 1859 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन.
सन 1861 में आज ही के दिन कलकत्ता यानी जो अब जिसे कोलकाता हम कहते हैं उसमें पहली बार चाय की सार्वजनिक बोली संपन्न हुई थी. और 1911 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था.
जी, ऑन दिसंबर 27 दैट इज ऑन दिस डे 1911 द नेशनल एंथम जनगण मन वॉज फर्स्ट संग लाइक यू सेड एट कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड इट इज द फर्स्ट चांस ऑफ द बंगाली हिम भारतो भाग्यो विधाता रिटन बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर. जनगण मन वॉज अडॉप्टेड एज द कंट्रीज नेशनल एंथम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950. रेवरेंस टू द नेशनल एंथम इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem.
और 1934 में आज ही के दिन पर्सिया के शाह ने पर्सिया का नाम बदलकर ईरान करने की घोषणा की थी. 1945 में आज ही के दिन 29 सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी. 1960 में आज ही के दिन फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था और 1961 में आज ही के दिन बेल्जियम और कांगो के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे.
And in the year 1968, Apollo 8, the first manned mission to the moon, returned safely to Earth after a historic 6-day journey. On December 21, Apollo 8 was launched by a 3-stage Saturn V rocket from Cape Canaveral, Florida, with astronauts Frank Borman, James Lovell Jr. and William Anders aboard. On the Christmas Eve, the astronauts entered into orbit around the moon, the first manned spacecraft ever to do so.
1972 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया में नया संविधान प्रभाव में आया था. 2002 की बात करें तो आज ही के दिन ईव नामक पहले मानव क्लोन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था. 2004 में आज ही के दिन भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती थी. 2008 में आज ही के दिन वी शांताराम पुरस्कार समारोह में तारे जमी पर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था और आशा एंड कंपनी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज ही के दिन 2008 में दर्ज किया गया था.
एंड टाइम नाउ टू रिमेंबर पीपल हु आइदर बॉर्न दिस डे और हु पास्ड अवे टुडे एंड इन दिस सेगमेंट वी बिगिन विद द रिमेंबरिंग माखन सिंह अ फ्रीडम फाइटर. ही हेल्प्ड ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर बाय ज्वाइनिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन टू कंट्रीज इंडिया एंड द लैंड ऑफ हिज बर्थ केन्या. His adopted homeland. He was born on this day in 1913 in Gujranwala district of erstwhile Punjab. At the age of 13, he moved with his family to Nairobi, Kenya. Makhan Singh transcended the boundaries and made common cause with the African population of Kenya to take on the British. Kenya was also a center of the Gadar party and Makhan Singh, Gopal Singh Chandan and Vasudev Singh were its chief organizers. In the year 1939 and the month of December, Makhan Singh left for India to study working class conditions and functioning of the trade unionism in Bombay and Ahmedabad. In India, he addressed the gatherings in Bombay and attended the Ramgarh session of the Indian National Congress as an African delegate. Singh was arrested by the British and moved from one prison to another for the next 2 years without being charged. On his release, Singh's movement was restricted to his native village in Gujranwala for 2.5 years and finally, In January 1945, he was set free, after which he started working with the newspaper Jang-e-Azadi. As India was going to achieve independence on 15th August 1947, Singh left for Kenya.
और अब याद करते हैं प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इतिहासकार विद्वान और आलोचक सुनील कोठारी को. आज उनकी पुण्यतिथि है. भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले सुनील कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. उन्होंने भरतनाट्यम, ओडिशी, छऊ, कथक समेत अन्य भारतीय नृत्य कलाओं पर 20 से अधिक किताबें लिखी हैं. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया. उन्हें गुजरात संगीत नाटक अकादमी ने गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था. सुनील कोठारी ने उदय शंकर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल की फोटो जीवनी पर भी काम किया था. सुनील कोठारी ने भारतीय नृत्यों पर 20 से अधिक किताबें लिखी. इनमें न्यू डायरेक्शंस इन इंडियन डांस, सत्रीय डांस ऑफ असम जैसी किताबें शामिल हैं. और उनकी किताबों में भारतीय नृत्यों के बनने, प्रसिद्ध होने और औपनिवेशिक दौर में उनके बचे रहने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक बताया गया है. सुनील कोठारी ने नृत्यों के उद्गम और उनकी यात्रा को समझने के लिए भारत के कई भीतरी और दूरदराज के हिस्सों में बहुत यात्राएं की. उन्होंने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी लोक नृत्यों पर खूब लिखा है. सुनील कोठारी ने रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय में उदय शंकर चेयर का नेतृत्व किया और फुल ब्राइट प्रोफेसर के तौर पर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नृत्य विभाग में पढ़ाया भी है. उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया. इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में, गुजरात संगीत नाटक अकादमी का गौरव पुरस्कार 2000 में, पद्मश्री 2001 में और अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं.
टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट पंजाब राव श्याम राव देशमुख. बॉर्न ऑन दिस डे इन 1898, पॉपुलरली नोन एज भाव साहब देशमुख, ही वॉज एसोसिएटेड विद सत्य शोधक समाज ऑफ महात्मा फूले एंड डिड सत्याग्रह फॉर द एंट्री ऑफ सो कॉल्ड अनटचेबल इन अंबाबाई टेम्पल अमरावती. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपोर्टेड हिम इन हिज मूवमेंट.
मिर्जा असदुल्ला बेखान यानी मिर्जा गालिब की आज जयंती है. उन्हें उर्दू फारसी का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है. उस समय प्रकाशित नहीं हुए गालिब के लिखे पत्रों को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है. गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है. उन्हें दबीरुल मुल्क और नज़्म-उद-दौला का खिताब मिला. गालिब आजीवन कर्ज में डूबे रहे लेकिन इन्होंने अपनी शान और शौकत में कभी कमी नहीं आने दी. गालिब नाम से लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे थे. उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे कवि शायर हैं लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है. विवाह के बाद गालिब की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती ही गईं. आगरा ननिहाल में इनके दिन आराम और रईसियत बीते थे. दिल्ली में भी कुछ दिनों तक उनका रंग रहा. 750 सालाना पेंशन नवाब अहमद बख्श खां के यहां से उन्हें मिला करती थी.
He wrote in both Urdu and Persian, although his Persian Diwan body of work is at least 5 times longer than his Urdu Diwan. His fame rests only on his poetry in Urdu. Today, Ghalib remains popular not only in the Indian subcontinent but also among the Hindustani diaspora around the world. He started composing poetry at the age of 11. And just to say the last word on him, love poetry in Urdu from the last quarter of the 17th century onward consists mostly of poems about love and not love poems in the Western sense of the term. The first complete English translation of Ghalib's ghazals was Love Sonnets of Ghalib, written by Sarfaraz K. Niazi.
लांस नायक अल्बर्ट एक्का की आज जयंती है. उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. ये रांची झारखंड जो कि तत्कालीन बिहार में था वहां के निवासी थे और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए वो शहीद हुए थे. इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया. वो एकमात्र बिहारी थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
And today is also the birth anniversary of Louis Pasteur, the French chemist, pharmacist and microbiologist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization, the last of which was named after him. And he was honored as the father of bacteriology.
पंजाब के प्रमुख सिख कार्यकर्ता उज्ज्वल सिंह की आज जयंती है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे. सरदार उज्ज्वल सिंह संवैधानिक तरीकों से देश की स्वतंत्रता के पक्षधर थे. देश की आजादी और विभाजन के बाद वे अपनी सारी संपत्ति पाकिस्तान में छोड़कर भारत आ गए थे। वे 1965 में पंजाब और 1966 में मद्रास, जो कि चेन्नई है, वहां के राज्यपाल पद पर रहे थे। उज्ज्वल सिंह 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और अनीता आनंद को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।